नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। सिंडी एम लुइस की माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप एक व्यावहारिक सॉफ्टवेयर मार्गदर्शिका है जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन डेस्कटॉप क्लाइंट सहित माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के डेस्कटॉप संस्करणों में परियोजना अनुसूची बनाने और नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य केवल मेनू और कमांड बताना नहीं बल्कि उन कमांडों को वास्तविक परियोजना योजना के तर्क से जोड़ना है। पुस्तक आरंभिक स्तर के पाठक को नया प्लान बनाना, कार्य सूची तैयार करना, संसाधन जोड़ना, असाइनमेंट करना और प्रगति दर्ज करना सिखाती है। इसके बाद यह कार्य अनुसूची लागत, संसाधन विवरण, दृश्य रिपोर्ट साझा करना, समेकन और एजाइल परियोजना प्रबंधन जैसे उन्नत विषयों तक जाती है। इस स्टेप बाय स्टेप ढांचा सीखने को क्रमिक अभ्यास में बदलता है, इसलिए पाठक किसी जटिल योजना को एक साथ समझने के बजाय उसके घटकों को क्रम से बनाता है। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें समय सीमा, निर्भरता, कार्यभार और स्थिति को एक ही योजना में विश्वसनीय ढंग से देखना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले परियोजना प्रबंधन के तर्क से शुरू होकर सॉफ्टवेयर सीखना। पुस्तक का आरंभ केवल माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की स्क्रीन से नहीं होता बल्कि परियोजना प्रबंधन और उपयोगकर्ता की भूमिका के संबंध से होता है। यह क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी शेड्यूलिंग टूल तभी उपयोगी है जब पाठक समझे कि योजना किन निर्णयों को स्पष्ट करेगी। कार्यों की सूची, उनकी अवधि, क्रम और जिम्मेदार व्यक्ति केवल डेटा प्रविष्टियां नहीं है, वे काम के दायरे और क्रियान्वयन की धारणाओं का मॉडल है। पुस्तक का आरंभिक मार्गदर्शन पाठक को इंटरफेस के मुख्य हिस्सों से परिचित कराता है जिससे बाद के चरणों में दृश्य तालिकाएं और रिबन विकल्प बिखरे हुए फीचर नहीं लगते। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि उपयोगकर्ता किसी तैयार टेम्पलेट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप नया प्लान शुरू कर सकता है। पुस्तक अलग अलग डेस्कटॉप उत्पादों और पुराने संस्करणों के फीचर अंतर का संदर्भ भी देती है जो मिश्रित तकनीकी वातावरण में काम करने वालों के लिए उपयोगी है। फिर भी इसका केंद्रीय फोकस डेस्कटॉप क्लाइंट है न कि केवल वेब आधारित सहयोग। इस प्रकार पाठक को सॉफ्टवेयर चलाने की प्रक्रिया के साथ यह समझ मिलती है कि एक व्यवस्थित योजना प्रबंधन संवाद अपेक्षाओं और नियंत्रण का आधार कैसे बनती है। दूसरा, कार्य सूची, निर्भरता और कैलेंडर से व्यवहार्य अनुसूची बनाना। सरल शेड्यूलिंग वाले भाग में पुस्तक नए प्लान से कार्य सूची तक एक आवश्यक अनुक्रम अपनाती है। पहले काम को पहचानना पड़ता है, फिर उसे सारांश कार्यों और छोटे क्रियान्वित कार्यों में व्यवस्थित करना पड़ता है। इसके बाद अवधि, आरंभ और समाप्ति की तिथियां, कैलेंडर तथा कार्यों के बीच संबंध योजना की वास्तविक समय रेखा बनाते हैं। यह संरचना इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल अंतिम तिथि डाल देने से विश्वसनीय शेड्यूल नहीं बनता। यदि पूर्ववर्ती कार्य, क्रमिक निर्भरता और उपलब्ध कार्य दिवस सही नहीं है तो योजना दिखने में साफ होते हुए भी व्यवहार में असंभव हो सकती है। पुस्तक गैंट चार्ट जैसे दृश्य के माध्यम से पाठक को यह देखने देती है कि कार्य सूची और समय रेखा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्नत अध्यायों में कार्य शेड्यूलिंग और कार्य विवरण को अलग से परिष्कृत किया गया है जिससे आरंभिक प्लान को अधिक सटीक बनाया जा सकता है। इस विभाजन का लाभ यह है कि पाठक पहले उपयोगी प्रारूप बनाता है, फिर बाधाओं, विवरणों और समय संबंधी निर्णयों को जांचता है। परिणाम स्वरूप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को तिथियों की सूची बनाने के साधन के बजाय निर्भरताओं से संचालित परियोजना मॉडल के रूप में समझा जाता है। तीसरा, संसाधन और असाइनमेंट के जरिए समय, क्षमता और लागत को जोड़ना। पुस्तक संसाधन स्थापित करने और उन्हें कार्यों को सौंपने को योजना निर्माण का अलग चरण मानती है। यह अंतर सार्थक है क्योंकि कार्य का अस्तित्व और उसे करने की क्षमता दो अलग बातें हैं। किसी कार्य को व्यक्ति, उपकरण या लागत, संसाधन से जोड़ने पर शेड्यूल केवल यह नहीं बताता कि काम कब होना चाहिए बल्कि यह भी दिखाने लगता है कि कौन या क्या उस काम में लगेगा। प्रारंभिक अध्याय संसाधन सेटअप और असाइनमेंट की आधारभूत प्रक्रिया देते हैं जबकि बाद के अध्याय संसाधन तथा असाइनमेंट विवरण को परिष्कृत करने पर केंद्रित हैं। यह क्रम उपयोगकर्ता को पहले सरल मॉडल बनाने और फिर कार्यभार, लागत तथा विशेष परिस्थितियों की जांच करने देता है। संसाधन जानकारी का मूल्य खासकर उन योजनाओं में बढ़ता है जहां एक ही व्यक्ति या साधन कई कार्यों में शामिल हो। ऐसी स्थिति में तिथि आधारित योजना पर्याप्त नहीं रहती क्योंकि क्षमता की सीमाएं प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं। पुस्तक का दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि बेहतर शेड्यूलिंग समय और संसाधन के संबंध को स्पष्ट करने से आती है, अनुमान से नहीं। पाठक असाइनमेंट को केवल नाम जोड़ने की क्रिया न मानकर जिम्मेदारी, उपलब्धता और काम के अनुमान को एकीकृत करने वाला प्रबंधकीय निर्णय समझ सकता है। चौथा, बेसलाइन और विस्तृत ट्रैकिंग से योजना को नियंत्रण प्रणाली बनाना। किसी योजना का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण उसके प्रकाशित होने के बाद शुरू होता है। पुस्तक प्रगति ट्रैकिंग के बुनियादी और विस्तृत दोनों तरीकों को अलग अध्यायों में रखती है। यह संरचना दिखाती है कि वास्तविक स्थिति दर्ज करना एक बार की रिपोर्टिंग नहीं बल्कि लगातार नियंत्रण की प्रक्रिया है। बेसलाइन स्थापित करने से स्वीकृत योजना का संदर्भ सुरक्षित रहता है। इसके बाद वास्तविक प्रगति, कार्य की स्थिति और परिवर्तित तिथियों की तुलना उस मूल संदर्भ से की जा सकती है। बिना बेसलाइन के उपयोगकर्ता वर्तमान योजना तो देख सकता है पर यह स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता कि बदलाव मूल अपेक्षा से कितना अलग है। बुनियादी ट्रैकिंग नए उपयोगकर्ता को स्थिति दर्ज करने की आदत देती है, जबकि विस्तृत तकनीकें अधिक सटीक निगरानी की जरूरतों के लिए है। पुस्तक स्थिति देखने और रिपोर्ट करने को भी इस प्रक्रिया से जोड़ती है, जिससे दर्ज किया गया डेटा केवल फाइल में बंद न रहे। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि परियोजना प्रबंधक विलंब, अधूरे काम या बदलती स्थिति पर बातचीत को अनुमान के बजाय अनुसूची के प्रमाण पर आधारित कर सकता है। इस विषय में पुस्तक का जोर नियंत्रण योग्य डेटा पर है, केवल रंगीन चार्ट तैयार करने पर नहीं। अंत में रिपोर्टिंग, अनुकूलन, एकीकरण और एजाइल उपयोग की व्यापकता पुस्तक के अंतिम भाग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को एक व्यक्तिगत शेड्यूलिंग फाइल से आगे ले जाते हैं। दृश्य और रिपोर्ट को गहराई से फॉर्मेट करना अलग अलग हितधारकों के लिए जानकारी को पठनीय बनाने में सहायक है। टीम सदस्य को निकट अवधि के कार्य चाहिए हो सकते हैं, जबकि प्रायोजक को समग्र स्थिति और प्रमुख संकेतक चाहिए होते हैं। अनुकूलन संबंधी अध्याय, जिनमें रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार और मैक्रो शामिल है, दोहराए जाने वाले कार्यों को अधिक कुशल बनाने की दिशा देते हैं। हालांकि मैक्रो और गहन अनुकूलन का उपयोग तभी उचित है जब मूल योजना और प्रक्रिया पहले से स्पष्ट हो। अन्य प्रोग्रामों के साथ जानकारी साझा करना, कई परियोजनाओं और संसाधनों का समेकन तथा प्रोजेक्ट सर्वर संदर्भ संगठनात्मक स्तर पर डेटा प्रवाह की जरूरत को संबोधित करते हैं। पुस्तक एजाइल परियोजना प्रबंधन के उपयोग को भी शामिल करती है। यह उपयोगी विस्तार है क्योंकि सभी परियोजनाएं केवल क्रमिक चरणों में नहीं चलती। फिर भी एजाइल सुविधाएं पारंपरिक शेड्यूलिंग अनुशासन का विकल्प नहीं बनती, बल्कि अलग कार्य पद्धति के लिए टूल के उपयोग को विस्तृत करती हैं। इस तरह पुस्तक पाठक को एक ही सॉफ्टवेयर के भीतर व्यक्तिगत योजना, साझा सूचना और विविध प्रबंधन पद्धतियों के बीच संबंध समझने देती है। निष्कर्ष में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप उन नए और मध्यम स्तर के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डेस्कटॉप में केवल बटन पहचानने से आगे बढ़कर उपयोगी परियोजना योजना बनानी है। परियोजना समन्वयक, शेड्यूलर, परियोजना प्रबंधक, संसाधन प्रबंधक और औपचारिक प्रशिक्षण लेने वाले पेशेवर इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। यह उन टीमों के लिए भी प्रासंगिक है जो प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल या प्रोजेक्ट ऑनलाइन डेस्कटॉप क्लाइंट का उपयोग करती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसके क्रम में है। पाठक पहले कार्यों और संसाधनों से योजना बनाता है, फिर शेड्यूल और विवरण को परिष्कृत करता है, प्रगति को बेसलाइन के विरुद्ध ट्रैक करता है और अंत में रिपोर्टिंग, साझा करने तथा समेकन जैसी व्यापक जरूरतों तक पहुंचता है। इस क्रम से सीखने वाला व्यक्ति फीचरों की अलग अलग सूची याद करने के बजाय उनके बीच कार्य संबंध समझ सकता है। समान सॉफ्टवेयर पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर व्यापक कवरेज और स्तरित संरचना है। यह आरंभिक योजना, उन्नत शेड्यूलिंग, विस्तृत ट्रैकिंग, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, अनुकूलन, बाहरी प्रोग्रामों से सूचना साझाकरण, बहु परियोजना समेकन और एजाइल उपयोग को एक ही मार्गदर्शिका में रखती है। साथ ही यह डेस्कटॉप क्लाइंट पर केंद्रित रहती है जो उन संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है जहां मजबूत शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट सर्वर आधारित प्रक्रियाएं अभी भी आवश्यक हैं। इसलिए यह संदर्भ पुस्तक और क्रमिक अभ्यास सामग्री दोनों रूपों में उपयोगी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सिंडी एम लुइस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।